ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தோ இஸ்லிய ஸ்ருதி மாதா பி கேத்தி ஹே யத்தோ வாச்சோ நிவர்த்தந்தே யதஹ யஸ்மாத் மனசஹித் வாச்சா நிவர்த்தந்தே. கைசே அப்ராப்ய மனசா சஹ. மன் சஹித் வாணி லோட் கே, கியோகி பிரத்யக்ஷ கா விஷய நஹி. ஆப் ஜோ பி போலேங்கே வோ பிரத்யக்ஷ யா பிரத்யக்ஷ மூலக் பிரமாண சே பாத் கரேங்கே. மேனே யே தேகா, மேனே இஸ்கே விஷய மே சுனா, மேனே ஐசி சீஜ் தேகி ஹே பஹலே பி, ஐசே பாத் கர்தே ரஹதே ஹே. पर वेदांत का जो विषय है वो न तो प्रत्यक्ष है न तो परोक्ष है. परोक्ष मानी स्वर्ग. स्वर्ग का प्रत्यक्ष किसी को नहीं होता है. मुझे आश्चर्य हुआ, एक स्वामी ने बोल दिया किसी के मरने पे, हाँ वो तो धाम में बैठे हैं, इनको कैसे दिखवा, गप भागते. वो धाम में है कैसे मालूम पड़ा आपको, है कौन सा दूरबीन खुरबीन लिया आपने, और ये भी मानता है गए होंगे दाम में. ये क्या बात है, ब्लफिंग. सो परोक्ष है, स्वर्ग ऐसा है कि जो परोक्ष है. पर एक बात है, अगर मैं स्वर्ग की चर्चा शास्त्र में जो हुई है उसके रूप में निरूपण करूं, रंभा है, उर्वशी है, नंदनवन है, फिर चिंतामणि है, फिर वहां का ऐसा अमृत है, वहां का ऐसा गंधर्व का संगीत है, ऐसा आप युवान रहेंगे, 20 साल से उम्र आगे नहीं बढ़ेगी, वहां ये मक्खी मच्छर नहीं होते हैं, क्लीन स्टराइल प्लेस, शादी की जरूरत नहीं है वहां, पहली बात ही सुखी हो जाएंगे तत्काल, तो ये सब बड़े आनंद से रहोगे वहां. ये वर्णन किया मैंने, आपको दिखेगा नहीं, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है. पर जब अगर आप स्वर्ग में गए तो क्या होगा उसका. हाँ स्वामी जी ने ठीक बताया था, ये देवी आपका नाम क्या, उर्वशी. हाँ उर्वशी बहन केम छो. ये कौन है रंभा, ये सब बुढ़िया है, याद रखना, युवान दिखती है सब बुढ़िया है. तब देखे जाएगा ये क्या है, ये कल्प वृक्ष है, ठीक है. सो जो नित्य परोक्ष है वो भी कालांतर में प्रत्यक्ष होता है. प्राय हम लोग में अमेरिका गए नहीं है और बाल बच्चे वहां चले जाते हैं, फिर वो लोग कहते मां आइए, पिताजी आइए, और उनकी बात में भूले भूल से भी आप आ गए तो फंस जाते हैं. वहां जाके कुछ करने का नहीं होता, इतने इतने कंट्रोल, इतने हदनी ऊपर कंट्रोल आ गए थे, एक जेल हो जाती है घर में बैठे बैठे, फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लेते, अपना प्रेम पूरी अच्छा वापिस आ जाएंगे. अब तो लोग एक प्रेम पूरी अमेरिका में खोलो भाई, अब कंटाल आ जाएगा. यहां अभी अभी हमारे लिए परोक्ष है, कनाडा परोक्ष है, सिंगापुर परोक्ष है, अक्षेप्य परा, पर वो भी प्रत्यक्ष हो सकता है. सो जो प्रत्यक्ष मूलक सब कुछ है आखिर तो, पर एक ही चीज है जो है. यहां बौद्ध लोग आके गएंगे, हां शून्य है, शून्य न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, मानी आत्मा क्या है, शून्य है. वो तो लग जाएंगे हमारे पीछे, एक दूसरी गड़बड़ है. वंद्या पुत्र भी क्या है, प्रत्यक्ष के परोक्ष है. वंद्या हो सकती है, लड़का हो सकता है, और वंद्या का बेटा षष्ठी संबंध नहीं हो सकता है. वंद्यासुत एषो याति वंद्यासुत, नहीं हो सकता है. तो ये वंद्यासुत का भी ये लक्षण है, प्रत्यक्ष भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है. तो क्या, कौन सी चीज है जो प्रत्यक्ष परोक्ष और प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात नहीं है, और जिसको जानना आवश्यक है और वो है, इसके लिए एक और प्रमाण का वर्णन कहते हैं, वो है वेदांत प्रमाण। वेदांत प्रमाण का भी वो विषय नहीं है डायरेक्टली, वहां वेदांत में शब्द का, वो भी उपनिषद के शब्द का प्रयोग करके उसके अर्थ को इंगित करके लक्षणा से लक्षित करके उसको फिर इशारा करके उसके विषय में बुद्धि में हम विद्या प्रकट करते हैं, शब्द लौट आते हैं, अपना काम करके वस्तु समझ में आ जाती है। इसको कहते हैं संप्रदाय। महावाक्य का जो उपदेश है उसका जो अर्थ है वो न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है, पर महावाक्य माने तू ही परब्रह्म है, इसका जो अर्थ है वो समझ में लाने के लिए आप कौन है, ईश्वर कौन है, उसका वाच्यार्थ क्या है, उसका लक्ष्यार्थ क्या है, ये शब्द धीरे धीरे संप्रदाय के अनुसार समझाया जाता है मानी पढ़ाया जाता है। शब्द फिर अपना अर्थ जो है वो देके शांत हो जाते हैं, वो इदम के विषय में नहीं। मैं आपको देखो दृष्टांत देखे बात करता हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहां उपनिषद में आया अनंतम ब्रह्म, ब्रह्मन अनंता, जो ब्रह्म तत्व है वो अनंत है। हम जो भी चीज जानते हैं प्रत्यक्ष से या परोक्ष रूप में, सब चीज परिच्छिन्न है मानी सीमित है, सबका जन्म है, सबका अंत है, सब कहीं ना कहीं देश में है और सबका अपना अपना एक एक लक्षण है, गुण है, खट्टा मीठा काला गोरा सबका लक्षण है, देश काल वस्तु परिच्छेद है। और जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं वो देश में नहीं आ सकता है, पर देश जिसके कारण है, इट इज नॉट इन स्पेस बट बिकॉज ऑफ होम यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, जो काल में नहीं है पर जिसके कारण काल है मानी वो नित्य है, काल का भी अधिष्ठान। तो यहां मैं शब्द का उपयोग करके लक्षणा से उसका इशारा करके और शब्दों को वापिस करके आपकी बुद्धि में उस अर्थ का आरूढ़ करता हूं, इसी को कहते हैं मौन व्याख्यान। होल टीचिंग इज बाय लक्षणा, महावाक्य लक्षणा। शब्द का सिद्धार्थ नहीं हो सकता है और शब्द का ही उपयोग करना है। यहां प्रायः लोग आपको कहते होंगे ये तो मनवाणी का विषय नहीं है, तो और क्या करेंगे, तो फिर कल प्रवचन क्यों करते महाराज आप, मनवाणी का विषय नहीं तो चले जाओ, या हमको कम टाइम बिगाड़ते हो। मनवाणी का जो विषय है वो प्रत्यक्ष इत्यादि है, और ये जो साक्षात अपरोक्ष स्वरूप है उसको हम वाणी का उपयोग करके उसमें जो वाणी में जो मर्यादा है उसको तोड़ के उसका लक्षण लखा के शब्द को लौटा देते हैं, मानी मन और वाणी लौटते नहीं है, अपना काम करके लौटते हैं। फर्क पड़ गया, देखो कितना बड़ा फर्क। मन वाणी का विषय नहीं है, वो तो उससे ऊपर है, अतीत है, अतीत आत्मा है, सब चालू हो जाएगा, ये नहीं है भाई, ये मन वाणी का ही विषय है। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही इसको जानना है। न मनसा मनुते ये न मनो आहुर्मनः तदेव ब्रह्मतम विद्धि, जिस मन का जो विषय नहीं होता है पर मन ही जिसका विषय है उसी को परब्रह्म कहते हैं। तो ये जो है इसको कहते हैं संप्रदाय। शंकराचार्य महाराज बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं असंप्रदाय वित्तु मूर्खवत उपेक्षणीय। जो ये संप्रदाय को नहीं जानता है और अपने आप लगाता जाता है मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु बन गया हूं सीधा, छोड़ो स्वयंभू गुरु, ये सबको क्या करना है, उनकी बात सुन के अपना समय गंवाना है। मूर्ख की बात सुनोगे तो क्या फायदा होगा। शंकराचार्य मूर्ख कहते हैं। आप देखिए संप्रदाय किसको कहते हैं, अध्यारोप अपवाद। पहले शब्द के ऊपर अर्थ का आरोप करके फिर उस अर्थ को दूर करके जो वस्तु है उसको लखाते हैं, इसी को कहते हैं अध्यारोप अपवाद। ठीक है, मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्वम युवानम। दक्षिणामूर्ति गुरुमूर्ति युवान है। दो प्रकार के युवान है, एक तो काल में बाल्यावस्था कुमार अवस्था पौगंड कुमार और युवा अवस्था को प्राप्त होता है, इसको कहते हैं युवा। दूसरा युवा शब्द का अर्थ है जो नित्य है, जो न काल में पैदा होता है न मरता है, इसलिए भी उसको नित्य युवा कहते हैं। तो दक्षिणामूर्ति काल की दृष्टि से क्या है, कालातीत है इसलिए युवा। वशिष्ठान्ते वसदृशिगणैः, और उनके पास अन्तेवासी अन्ते समीपे वसती, जो गुरु के नजदीक जाके पढ़ने के लिए बैठता है गुरु के आश्रम में रहकर, उसका नाम होते है अन्तेवासिन। आपका बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाता है तो क्या हो गया, अन्तेवासी। आपने ट्यूशन क्लास ज्वाइन कर लिया, रोज वहां 3 घंटे बैठते हैं, क्या हो गया वहां, अन्तेवासी। कौन है दक्षिणामूर्ति के नजदीक पढ़ने के लिए कौन कौन आए विद्या अभ्यास के लिए, वशिष्ठान्ते ब्रह्मनिष्ठ, जो वशिष्ठ आदि भी है सनक आदि भी है, वसत ऋषिगण ही, ये ऋषि ऋषि का अर्थ ये नहीं होता लंबा दाढ़ी मानी ऋषि, हम लोग का एक गड़बड़ है मगज में, लंबा दाढ़ी और लंबी जटा और टी ये ना हाथ रखने के लिए, ऐसा आ गया तो क्या हो गया, परम योगी ऋषि हो गया। ऋषि शब्द कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है, असियर जो दृष्टा है आर्ष दृष्टा है, रुषंति जानंती जो जानता है और जिसको हरेक विषय स्पष्ट है और उसकी स्पष्टता उसके व्याख्यान में भी है, उसको कहते हैं ऋषि। पहली बात हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमें सचमुच में हम क्या चाहते हैं। दूसरी बात, जिसको हम सचमुच में चाहते हैं वो कैसे प्राप्त हो। तीसरी बात, जिससे ये प्राप्त होता है वो कहां मिलेगा। तो बताया गया अमुक औषधि से लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे ये बता दिया, सबसे बड़ा काम क्या था, अभी कहां है औषधि, है ना, हिमालय में है। हनुमान जी बहुत प्रैक्टिकल है, ये वैद्यराज बोलेगा ये नहीं ये है करके गड़बड़ करेगा, पूरा का करे पूरा पहाड़ माने पूरे औषधि की दुकान लेके घर में आ गए, ऐसे क्या है? देख लो, ढूंढ लो, भी माना गड़बड़ मत करना है। तो हमको जो चाहिए वो मुक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी? वेदांत विचार से। वेदांत विचार कहां किया जाएगा? सदगुरु के पास। सदगुरु कौन है? जो वेदांत विचार कराए। वेदांत विचार कौन कराएगा? सदगुरु। सदगुरु कौन है? अभी गड़बड़ हो गया ना। इसको कहते अन्योन्य आश्रित। प्रातः स्मरणीय स्वामी अखंड जी महाराज ने हमको एक दृष्टांत दिया था। मच्छर लोगों को एक चीज अच्छी नहीं लगती है, वो है हवा। हवा का झोंक आता है ना तो उड़ जाते बेचारे। तो सब मच्छर पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास, ये हवा हमको कहीं टिकने नहीं देती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा हवा को बुलाओ, दोनों साथ में होंगे तब न्याय होगा, जजमेंट हो जाएगा। जब हवा को बुलाई तो मच्छर उड़ गए। तो अभी तक न्याय नहीं हुआ है। When one is, other is not। दूसरा दृष्टांत यह है, लड़का थोड़ा सा गुजराती में कह पावली गैप है, सूरत नहीं भाषा में कातरियो फरी गई, तो थोड़ा कम था गड़बड़। तो लोगों ने कहा इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, पागल की शादी कर दो ठीक हो जाएगा। अभी तकलीफ यह है कि शादी कब होगी? ठीक हो जाएगा तब, और ठीक कब होगा? माने और अगर कोई भी तय भी कर दे तो उसका उसका पड़ोसी वो बोल देगा ये गड़बड़ है, अकेला अकेला बोलता है। जब तक उसका पड़ोसी है वो कभी शादी तय नहीं होने देगा, और जो भी आएगा उसको बोलेगा यहाँ गड़बड़ है, भगवान है, कोई वादा नहीं, कर लो, भगवान है आप कर लो, पर गड़बड़ है। इसलिए अन्योन्य आश्रित हो गया। प्रमाण का विचार करना चाहिए, किसके पास जाए? गुरु। गुरु कौन है? प्रमाण का विचार करेगा। तो कैसे मालूम पड़े गुरु कौन है? गुरु का लक्षण यह है कि जिसके सत्संग में बैठने से भी मुझे स्पष्टता आ जाए, और मुझे स्पष्ट है कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा ये हमको दे सकते हैं कि नहीं। अगर आपने संगीत का अभ्यास 6 साल किया है और आगे संगीत का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको एक क्षण में मालूम पड़ जाएगा कि ये उस्ताद हमको सिखा सकता है कि नहीं, उनका ज्ञान देख के। हमको मालूम पड़ेगा प्रोफेसर कौन हमको पढ़ा सकता है, हम इतने एमएससी तक पढ़े हैं। तो ऐसे ही वेदांत में भी है, जिन्होंने ये प्रेमपुरी बहुत अच्छी जगह, यहां संस्कार होता है, और इस संस्कार के द्वारा हमको मालूम पड़ता है क्या ब्रह्म है, क्या जिज्ञासा है, क्या मुमुक्षा है। और उसके लिए फिर जिसमें हमें स्पष्टता मालूम पड़े वो पढ़ा सकता है, वही गुरु है। उनके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए बैठे। वशिष्ठान्ते वसद ऋषि गणै आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। आप ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, अगर ब्रह्मनिष्ठ है तो गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, और गुरु के पास गए हैं तो ब्रह्मनिष्ठ अन्योन्य आश्रित है। पर ये आगे जाके ब्रह्मनिष्ठ बनने वाले हैं, इसलिए अभी से उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ। आप कभी मेडिकल कॉलेज में जाइए, ये फर्स्ट ईयर मेडिकल में जो पढ़ता है ना लड़का, वो भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, सेकंड ईयर वाला भी स्टेथोस्कोप लगा के घूमेगा, एप्रोन लगा के घूमेंगे बड़े प्रेम से। और उनको क्या कहा जाता है, विद्यार्थी कि डॉक्टर? प्रेमपुरी वाले को एक टूर लगाओ वहां मालूम पड़ेगा क्या बोलते हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? डॉक्टर। जो ट्रेन दिल्ली जाने वाली उसको क्या कहते हैं? ये दिल्ली की दिल्ली ट्रेन है, ये दिल्ली गई नहीं, यहीं खड़ी है बंबई में। दिल्ली जाने वाली ट्रेन को भी क्या कहते हैं? दिल्ली ट्रेन। मेडिकल में डॉक्टर बनने वाले को भी क्या कहते हैं? डॉक्टर। ब्रह्म ज्ञान जिसको होने वाला है उसको भी क्या कहते हैं? ब्रह्मनिष्ठ। आप लोग का एक नया नाम मिल गया आज, कितना आनंद है। पहले तो धन्यवाद इतनी वर्षा में आप लोग आए। आज आपका नाम क्या है? सब आपको प्रणाम करता हूं, हरे ब्रह्मनिष्ठ। एक बात है, प्रेमपुरी में आने वाला ना ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्योंकि ऊपर नीचे मरने के बाद जा नहीं सकता। क्यों? इतना वेदांत सुना है, यमराज भी कहेंगे भाई इनको छोड़ो, ये वहां के और लोगों को बिगाड़ेगा, इनको वहां के उपदेश करने लगेगा, नरक वाला गड़बड़ करेगा, इसको यहीं रहने दो। जब तक ज्ञान ना हो तब तक प्रेमपुरी में रहे, वापिस यहीं आएगा। वशिष्ठान्ते वसदृशिगणै आवृतम् ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम् करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम्। अब आप देखिए, दक्षिणामूर्ति की चारों ओर जिज्ञासु तत्व ज्ञान ग्रहण करने के लिए विराजमान है। गुरु वो व्याख्यान कर रहे हैं जिसमें लक्षणा से ही वस्तु ग्रहण की जा सकती है, इसका अर्थ है वेदांत प्रमाण का विचार कर रहे हैं। और गुरु की मुद्रा है, आप देखिए यहां श्री कृष्ण का चित्र लगा है ना सब जगह, नहीं हो रक्षा रथ वाला, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्रा, चिन मुद्रा, भद्र मुद्रा, उनकी भी मुद्रा क्या है? समग्र अध्यापन जो करा रहे हैं, ऑल टीचिंग, एक मुद्रा में उसका परिसमापन हो जाता है। मुद्रा क्या है? ये तर्जनी जो है वो अंगुष्ठ के साथ मिला के वहां एक सर्कल वर्तुल बन गया है, और ये तीन उंगलियां अलग है, छोटी वाली सत्व, मधली रजस, और सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा हम लोग में क्या है, आप लोग में उल्टा भी हो सकता है। ये आंसर देने में भी देर लगती है, इसका अर्थ क्या है? तो तमस, सो सत्व रजस तमस जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन, ये संसार है। अगर ऐसा करोगे ये क्या होगा? कांग्रेस आई मत बोलना, ये क्या है? ये संसारी है, फिर ऐसे करेंगे वो लोग, तो ये जो है। पर जब गुरु की मूर्ति पढ़ाते पढ़ाते संसार से धीरे धीरे ये तर्जनी मानी लड़ने के लिए अंगली, आप देखो जब भी लड़ाई करते तो अंगली कैसे आती आगे, ये आती है, जब करने भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। ये तर्जनी अहंकार है, मैं अहंकार, और ये सबसे अलग रहता है अंगुष्ठा, और सब उंगलियों को वही शक्ति देता है। इसलिए ताजमहल बनाने वाले लोग बेवकूफ थे सचमुच, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि अंगूठा कटने वाला है। देखो कितने भयंकर वहां के लोग थे, मैं कभी ताजमहल देख नहीं सकता, मुझे ये सब याद आता है ना तो बहुत बुरा लगता है, कितनी क्रूरता है इन लोग में। तो उन्होंने काट दिया सबका अंगूठा, क्यों? अभी दूसरा नहीं बनाएगा। अरे भाई दूसरा बनाने दो, कौन बना सकता तुम्हारा जैसा? तो ये अंगुष्ठ कट जाएगा तो पूरा हाथ क्या हो जाएगा? कोई काम का रहेगा? ये दूर है, सबको प्राण शक्ति क्रिया शक्ति देता है। ऐसे ब्रह्म तत्व सबसे अतीत है, सबको धारण पोषण करता है, इसलिए अंगुष्ठ क्या है? पूर्ण ब्रह्म। अभी पूर्ण ब्रह्म संसारियों से अलग है, ये चलते चलते तत्व ज्ञान हो गया, मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, और ये जो गोल हो गया इसका आदि भी नहीं है अंत नहीं है, इसलिए पूर्णत्व की प्राप्ति हो गई। इसको क्या कहते हैं? चिन मुद्रा, भद्र मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, है ना, ज्ञान मुद्रा। श्री कृष्ण ने भी यही धारण किया था। इसके द्वारा हमको हंसी की बात यह आती है, मैंने एक ब्रह्मचारी को पूछा था ये क्या मुद्रा है, तो उन्होंने कहा चिकनी नसों के हिंदी में बजर, ये बजर की मुद्रा है, उसमें बजर रखते हैं फिर लेते हैं, यही हो जाएगा, ये भी मुद्रा कर दोगा तो तीन मुद्रा, ये तीन मुद्रा के द्वारा क्या करते हैं, करकलित चिन्ह मुद्रमानंद रूपम, और आनंद मूर्ति है और मुखारविंद प्रसन्न है। देखो एक बात है, आत्मा आनंद है ऐसा जब वर्णन करते हैं तो हृदय में आनंद होगा कि दुख होगा, और ये नहीं कि आत्मा आनंद रूप है हम तो संसारी है, ऐसे नहीं वर्णन है, मैं आनंद हूं और ईश्वर कृपा से आप भी क्या है, आप भी आनंद है। ये नहीं कि आत्मा आनंद है तुमको आनंद को प्राप्त करना है, मैं तो दुखी संसारी हूं, ऐसे नहीं बात करते गुरु। गुरु कहते अहम आनंद है त्वम अभिवाट आनंद। तो ये जो आनंद पूर्वक पढ़ाते हैं, आपने कभी देखा होगा स्वामी परम पूज्य महाराज श्री का मुखारविंद, हमेशा मुखारविंद पे क्या आता है, मुदित वदन, मुदित वदन माने जस प्रसन्नता, हसित प्रहसित, ये नहीं अट्टहास्य नहीं, जोर से ना मुदिता, आनंद स्वरूप का चिंतन करते करते वर्णन करते करते मुखाकृति भी क्या है, मुदित वदन, ये दक्षिणामूर्ति है। मैं कभी भी मूर्ति देखती हूं दक्षिणामूर्ति, कल तक मैं कोयम्बतूर में था, ये पत्थर की मूर्ति में मुखारविंद पे इतने सुंदर स्मित को प्रकट करना, ये सचमुच हमको आश्चर्य होता है, प्रसन्न वदनम, व्हाट अ थिंग। स्वात्मा रामम मुदित वदनम, स्वात्मनि स्व आत्मनि आराम, जो अपने आराम आत्मा में ही आनंद में मस्त है, आत्मनि आत्मना तुष्ट है, यह है दक्षिणामूर्ति, उनकी मैं स्तुति करता हूं भजन करता हूं। कल श्लोक लेंगे आगे। ओम शांति शांति शांति।